Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tav Tattvam Na Janami Kidrishosi Maheshwara Yadrishosi Mahadeva Tadrishaya Namo Nama Yo Asau So Aham Yajam. O Shanti. Mundak Upanishad अथर्ववेद की एक बहुत छोटी सी उपनिषद, किंतु मुंडक का मतलब होता है मुख्य, सिर को मुंडक कहते हैं। सभी उपनिषदों का जो विषय है उसको इस उपनिषद में बहुत स्पष्ट शब्दों में बतलाया गया। आरंभ में विद्या के महत्व की बात की गई है कि इसकी परंपरा क्या है, अर्थात अनादि। ब्रह्म विद्या कब शुरू हुई? जब ब्रह्म शुरू हुआ। ब्रह्म भी आदि, अनादि, अनंत और उससे संबंधित उसकी विद्या भी अनंत। शौनक के पूछने पर अंगिरस परा अपरा विद्याओं का थोड़ा उल्लेख करके फिर तत्व का निरूपण करते हैं और वो कहते हैं कि जो तूने पूछा है कि वो एक तत्व कौन सा है जिसको जानकर सभी कुछ जाना हुआ हो जाता है, उसके संबंध में उत्तर देते हैं कि जो तूने पूछा यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवरणम अचक्षु श्रोत्रम तत्पाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तत् अव्ययम् यत् भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा। वह जो तूने पूछा है वो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवरण है, चक्षु शोरोत्र के रहित है और हाथ और पांव के भी बिना है। वो नित्य है, विभू है, सर्वगत है, अत्यंत सूक्ष्म है और अव्यय, और वही पूर्ण भूतों का जनक है। सभी भूत उसी के कारण हैं। वो हो तो ये सब हैं, ये ना हो तो वो तब भी है। ऐसा विवेकी जन, इस तरह से जो धीर पुरुष हैं वो उसको जानते। इस श्रुति के माध्यम से उस परम तत्व को ये बतलाया गया, पहले अदृश्य ग्राह्य आदि कह के, कि वो दृश्य नहीं है, और फिर कहा गया वो दृष्टा भी नहीं है, फिर बतलाया गया कि वो ज्ञाता भी नहीं है, और फिर कहा कि वो ज्ञेय भी नहीं है, फिर कहा गया वो भोक्ता भी नहीं है और वह भोग्य भी नहीं है। अर्थात दृष्टा और दृश्य ज्ञाता और ज्ञेय, भोक्ता और भोग्य, ये उसी में कल्पित हैं। ज्ञाता ज्ञेय दृष्टा दृश्य भोक्ता भोग्य की सत्ता उसी से है, लेकिन वो इनके बिना भी है, ये इसका अभिप्राय है। जैसे घड़े की सत्ता मट्टी के कारण है, लेकिन मट्टी घड़े के बिना भी है। मट्टी को घड़े की जरूरत नहीं, लेकिन घड़े की कल्पना कभी नहीं हो सकती जब तक मट्टी ना। तो इसमें ये बात कही गई है इसी श्रुति में कि वो तत्व एक ऐसा है कि जिसके होने से ही सब कुछ है। जो कुछ भी आप देख रहे हो, कर रहे, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, जो कुछ आप जहां कहीं भी आप चल के जा रहे हैं, जहां कहीं भी आपकी कल्पना पहुंच सकती है मन की, ये सब कुछ उसी के होने से है। और ये सब ना भी हो वो तब भी है। ये प्रपंच, ये संसार, जो कुछ हमें अब नजर आ रहा है, ये जब नहीं है तो वो तब भी है, ये हो तो वो तब भी। इसके होने ना होने से उस परम तत्व का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसकी सत्ता, इसका होना प्रपंच का बिना उसके नहीं हो सकता, ऐसा इन्होंने यहां समझाने का प्रयत्न किया। फिर कुछ उन शब्दों को लिया जो थोड़ा बहुत हमें उसके नजदीक ले जा सकते हैं। नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, अव्यय। नित्य का अर्थ होता है काल परिच्छेद रहित। देश, काल और वस्तु, ये तीन चीजें हैं जो परिच्छिन्नता का कारण। परिच्छिन्न का मतलब होता है जो महान में से एक टुकड़े को अलग कर दे। जैसे घड़ा बना तो घड़े के अंदर की जो खाली जगह है वो परिच्छिन्न आकाश। आकाश तो महाआकाश है ही, आकाश को कोई अपनी सीमाओं में बांध नहीं सकता। हम ये कहें कि ये आकाश इतना सा है, आकाश की कोई सीमा नहीं है। लेकिन घड़ा बन गया तो घड़े के अंदर की जो खाली जगह है वो सीमित हो गई। कमरा बन गया तो इस कमरे के अंदर की खाली जगह ये सीमित हो गई। ये जो जगह हम देख रहे हैं इतने फुट लंबी, इतने फुट चौड़ी, तो दीवारों ने आकाश को परिच्छिन्न किया। आकाश अपने आप में परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्न का मतलब है टुकड़ा नहीं है, उसको अलग नहीं कर सकते। इसीलिए बोलने में हम बोलते हैं ये मठाकाश है, ये घटाकाश है, ये महाआकाश। एक ही आकाश में ये कल्पना हो गई। कल्पना होने का अर्थ ये है कि आकाश के तो कभी टुकड़े होते नहीं, आकाश को तो कभी कोई वस्तु परिच्छिन्न कर नहीं सकती। लेकिन हमें लग रहा है कि जो बाहर वाला आकाश है उससे हमारे इस कमरे वाला आकाश छोटा है, ये उसमें कल्पित है, ऐसा ये शब्द लेते। कल्पित का अर्थ होता है कि ये वास्तविक नहीं है, वास्तव में हम टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसा वेदांत में एक शब्द बार बार आएगा, अंश अंशी संबंध, जीव और ब्रह्म अंश अंशी के रूप में हैं, अर्थात अंग अंगी के रूप में हैं। जीव एक अंश मात्र है और वो अंशी। अंश अंशी का अर्थ ये नहीं होता कि जैसे किसी बड़ी चीज से कुछ एक टुकड़ा काट के हम ले गए, जैसे यहां कुछ चीज रखी हो, एक बर्फी का टुकड़ा रखा हो, उसमें से हमने थोड़ा सा काट लिया और उसको किसी को दे दिया प्रसाद रूप में, तो वो बर्फी का टुकड़ा जब कट गया उससे तो वो बिल्कुल उससे अलग हो जाता है। लेकिन आकाश को जब हमने ये कमरा बना लिया तो ये महाआकाश से बिल्कुल अलग नहीं हुआ। ये दीवारें बनी हुई होने पर भी ये उससे जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कमरा स्वयं आकाश में कल्पित, इसके बाहर भी आकाश है, इसके अंदर भी आकाश है। बाहर भी आकाश और अंदर भी आकाश की जब आप कल्पना करोगे तो फिर आपको लगेगा कि ये दीवारें कल्पित हैं। कल्पित का मतलब जैसे ख्यालों में आप कोई चीज बना लें कि इतना सा ये है। ये दीवारें कभी नहीं थी, अब हैं, फिर नहीं रहेंगी। इनको बढ़ाया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है, कमरे को कुछ भी कर सकता है। तो इसके अंदर भी आकाश है, इसके बाहर भी आकाश है, तो फिर ये आकाश का अंश कैसे, फिर इसको हम आकाश का टुकड़ा कैसे मानेंगे? ये उससे अलग नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि वस्तुतः जो ये मठा आकाश, कमरे वाला आकाश है, यही महाआकाश, इन दोनों में जिसको हम जीव कह रहे हैं वही ब्रह्म है। बात वहां तक पहुंचेगी कि जिसको हम जीव कह रहे हैं वो परिच्छिन्न चेतन है। चेतन ने, अंतःकरण ने हमारे चेतन को परिच्छिन्न किया। हमारे में अंतःकरण नाम की एक चीज है। हमारा शरीर चेतन को परिच्छिन्न नहीं कर सकता, चेतन को अंतःकरण परिच्छिन्न करता है। चेतन तत्व वह है जैसे जिसको थोड़ा बहुत आप समझो आकाश से मिलती जुलती बात कह लो, वो इतना विभू है, महान है, ऐसा कुछ कल्पना करो। और उस अनंत चेतन में एक अंतःकरण, जैसे इस महान आकाश में एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली किसी ने, तो वो छोटी सी झोंपड़ी असल में उसके अंदर बाहर सब कुछ आकाश ही है। और जब उसके अंदर बाहर आकाश ही है तो उसकी जो बीच की दीवारें हैं वो भी केवल भ्रम मात्र है। वस्तुतः वो आकाश से उसको अलग नहीं कर रहे, ये उसका कहने का अभिप्राय होता है इनका। जब ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं अंश अंशी का या और कोई, तो उस समय कभी भी ये अर्थ नहीं होता कि जैसे भौतिक दृष्टि से हम टुकड़े करते हैं चीजों के, वो टुकड़े अलग हो जाते हैं, काट काट के उसके एक चीज के 10 टुकड़े किए और 10 लोगों को हमने पकड़ा दिया। लेकिन चेतन में इस तरह का विभाजन नहीं होता। जैसे आकाश में कोई विभाजन नहीं हो सकता, उसको आप घटाकाश कहें, मठाकाश कहें, महाआकाश कहें, जलाकाश कहें। विचार सागर नाम की एक पुस्तक है, उसमें जीव और ब्रह्म की कल्पना बहुत सरल और बड़े सीधे ढंग से समझाई गई। उसमें जलाकाश, घटाकाश, महाआकाश और इन सब का, और तटस्थ जिसको कहते हैं कूटस्थ, इनको, इन शब्दों को लेकर जीव और ब्रह्म की कल्पना की गई कि महाचेतन में ये जीव किस तरह थे। अभिप्राय केवल ये है कि ये केवल कल्पित हैं। जब हम एक घड़े को लेकर, हाथ में घड़ा लेकर हम चलें, तो घड़े के अंदर की खाली जगह वो भी चलती हुई नजर आती है। हमें लगेगा कि वो घड़े के अंदर जो खाली जगह है, घटा आकाश चल रहा है। वास्तविकता यह है कि आकाश चलता नहीं है कहीं, आकाश में कोई गति नहीं है, वो चलता भी कहीं नहीं और सब जगह पहुंचा हुआ है। वो कोई हरकत भी नहीं करता, लेकिन सब तरह की उसमें मूवमेंट हो भी रही है। अर्थात उस घट को, उस घड़े को हलाने जुलाने से आप जैसा भी उसको करेंगे लगेगा कि आकाश हिलजुल रहा है। वास्तविकता यह है कि आकाश में कोई हलचल होती नहीं, इसीलिए ये जति तन नई जति तद दूरे तद अंत के, ऐसा ऐसा श्रुतियों ने कहा कि वो चलता भी है वो नहीं भी चलता, वो नजदीक भी है वो दूर भी है, परिछिन्न भी है अपरिछिन्न भी। इसका अर्थ केवल ये होता है कि ये दूरी और ये निकटता, ये परिछिन्नता और ये अपरिछिन्नता, ये नित्यता और ये अनित्यता, ये सब उसमें कल्पित हैं, इन सब का उससे कोई संबंध नहीं, ये वस्तुतः है ही नहीं, लेकिन उस महान तत्व में, उस विभू में इन सब की कल्पना मात्र है, अपने आप में इनका कोई अस्तित्व नहीं। ये इन सब बातों को कहने का अभिप्राय है उनका। तो यहां पर जो उन्होंने नित्य कहा, नित्य का मतलब होता है काल परिच्छेद रहित, अर्थात उस तत्व को समय अपनी पकड़ में नहीं ला सकता। समय अपनी पकड़ में लाने का अर्थ है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो कब शुरू हुआ कब उसका अंत होगा, काल परिच्छेद रहित, जिसको कल्पनातीत या कालातीत कहते हैं। कालातीत का अर्थ होता है जो अनुभव में ना आ सके, जो कालातीत होगा, कालातीत का मतलब जो अनुभव में ना आए लेकिन कल्पना मात्र आप कर सको, वो कभी अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि काल अपने आप में काल से परे। आम तौर पर आप ऐसा अर्थ भी ये करते हैं कि वो काल से परे है, ऐसे शब्द बोलने से ऐसे लगता है कि जैसे काल कोई वस्तु है और वो उससे आगे परे कहीं कोई और चीज है। इससे द्वैत का भ्रम होता है, लगता है कि वो काल से परे है, देशातीत, वो देश से परे है। परे कहने से ऐसा लगता है कि जैसे देश कोई वस्तु है कि जहां सारे ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई खत्म हो जाए, जहां पर ये ब्रह्मांड ना रहे वो वहां से फिर आगे परे कहीं होगा, ऐसा देशातीत कहने से भ्रांति होती, ऐसे ही द्रव्यातीत कहने से भ्रांति होती है कि द्रव्य कोई पदार्थ है, वस्तुएं हैं, और जहां सारी वस्तुएं खत्म हो जाएंगी उससे परे आगे कहीं वो बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चीजें दो नहीं हैं, इनसे द्वैत पैदा होगा, एक तो वस्तुएं और एक वो तत्व, कि यहां वस्तुएं खत्म हुई फिर आगे वो शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है इन शब्दों से जब हम ये कहेंगे कि वो द्रव्यातीत है, वो देशातीत है, वो कालातीत है। इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि ये देश, ये काल, ये द्रव्य उसी में कल्पित हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये सब उसी में ही भास रहे हैं, बिना हुए ही उसमें भास रहे। तो है वही एक मूल तत्व। इसका अर्थ ये भी होता है कि वो मूल तत्व ही अपने आप को इन चीजों के रूप में दिखला रहा है। क्यों वो अपने आप को ऐसा दिखला रहा है? क्योंकि ये उसका स्वभाव है, चेतन। और स्वभाव के लिए क्यों का प्रश्न नहीं होता कि स्वभाव क्यों ऐसा है। अब हम ये प्रश्न करें कि अग्नि जलाती क्यों है, तो ये कोई प्रश्न नहीं, इसको तो हाइपोथेसिस अर्थात ये मानकर चलते हैं इस बात को कि अग्नि का स्वभाव है जलाना। अग्नि की पहचान ही तब होगी अगर उससे प्रकाश और दाहिकता मिले तो। अब उसका कारण नहीं है कोई कि ये क्यों जलाती, वो उसका स्वभाव है। ऐसे ही चेतन का ये स्वभाव है कि वो अपने आप को विभिन्न वस्तुओं के रूप में, वस्तुएं कहें या एक ही शब्द कहना हो तो देश काल वस्तु, कि वो अपने आप को देश के रूप में, काल के रूप में, वस्तु के रूप में दिखलाता है। वस्तुतः स्वयं ना वो देश है, ना काल है, ना वस्तु, वो इन सब का अधिष्ठान है। अधिष्ठान का मतलब तो जिसके ऊपर ये सारी कल्पनाएं हो रही। जब कभी भी उस ब्रह्म का हम निरूपण करते हैं वेदांत में, तो वो अधिष्ठान के रूप में उसका निरूपण होता है, और जब जीव का कभी निरूपण करते हैं तो प्रकाशक के रूप में उसका निरूपण होता है। जीव प्रकाशक है और ब्रह्म अधिष्ठान है। ये काल है, ये समय है, ये वस्तु है, इसका प्रकाशक कौन? इसका प्रकाशक मैं। जी, मैं कहूंगा ये टाइम इतना है, ये समय इतना है, ये स्थान इतना है, ये वस्तु ये है। तो जो जीव है वो प्रकाशक है, और जो ब्रह्म है वो अधिष्ठान है, उसके ऊपर ये सब चीजें कल्पित। ये जो ब्रह्म के ऊपर देश काल वस्तु की कल्पना है, इसी को ही माया कहते हैं। माया कोई और चीज नहीं है, माया कोई इससे अलग बात नहीं है। माया का मतलब होता है देश काल वस्तु के रूप में ब्रह्म का अपने आप को दिखला देना, जबकि वस्तुतः वो न देश से परिचिन्न है, न काल से परिचिन्न है, न द्रव्य से परिचिन्न है। वास्तविकता ये है कि वो इनमें से बंधा हुआ नहीं है। मट्टी अपने आप को घड़े के रूप में दिखला दे, दीपक के रूप में दिखला दे, किशोरे के रूप में दिखला दे, हांडी के रूप में दिखला दे, और खिलौनों के रूप में दिखला दे, मट्टी के खिलौने भी बने होते हैं। तो मट्टी अपने आप को, क्योंकि मट्टी अलग है और उसके खिलौने बनाने वाला अलग है, इसलिए वो कोई उदाहरण ऐसा नहीं बनता, क्योंकि उसमें उपादान कारण अलग है, निमित्त कारण अलग है, और सहकारी कारण अलग है। आम तौर पर जब कोई चीज बनाई जाती है, घड़ा बनाना हो तो मट्टी अलग है, कुम्हार अलग है, और कुम्हार जिन यंत्रों का सहारा लेकर घड़ा बनाता है वो अलग है, उनको सहकारी कारण कहते। तो तीन चीजों से मिलकर भौतिक वस्तुएं बनती हैं, लेकिन जहां ब्रह्म की बात है उसका कोई सहायक नहीं है, उसको किसी यंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आप अभी रोज हम कहते रहे हैं अपानी पादव अश्रोत्र चक्षौ, उसके तो ना हाथ ना पैर ना अंतःकरण ना कुछ है, इसलिए वो निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है, और सहकारी कारण भी वही। ईश्वर को कुछ बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। क्यों जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि वास्तव में कुछ वो बनाता ही नहीं, वास्तव में ये है ही नहीं जिसको हम समझ रहे हैं कि ये कुछ बना हुआ है, क्योंकि हर एक का आखिरी अनुभव यही हुआ करता है कि ख्वाब था, जो कुछ भी देखा जो सुना अफसाना था। चलते हुए इस दुनिया में जब भी कोई जाने लगा तो उसको यही लगता है कि कोई था कुछ भी नहीं, ऐसे ही एक तमाशा सा हुआ, आए भी और चले भी गए। लाई हयात आई कजा, ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। कब आ गए हम इस संसार में, कौन ले आया, और कब चले जाएंगे, कब गए लोग हमारे से पहले कितने, उन सब का यही एक उनको देखकर भी लगता है, और उन सब का अनुभव भी यही है कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। आए भी और गए भी, हो उम्रे खिजर भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहां, अभी आए अभी चले। उम्रे खिजर का मतलब होता है अगर लाख वर्ष की उम्र भी हो, एक करोड़ वर्ष की उम्र भी हो जाए किसी की, वो भी चलते हुए उसे ऐसे ही लगेगा कि क्या हुआ, बस ऐसे लगता है जैसे कल की बात है कि मैं आया था और आज जा रहा हूं। तो कितनी भी उम्र तो इसका मतलब वाय नादानी के वक्ते मर्ग ये साबित हुआ। कहते कितनी बेवकूफी की बात है कि मरते समय ये बात सिद्ध हो गई। वाय नादानी के वक्ते मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ भी देखा जो सुना अफसाना था, जो कुछ भी करते चले गए, बड़े बड़े लोग आए कर गए, ये रोज कहानियां पुराणों में हम सुनते हैं। पुराणों की कहानियों का वेदांत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेदांत शुरू से ये मान के चलता है कि ये सब है नहीं, ब्रह्म में कल्पित है। इसलिए क्योंकि ब्रह्म में जो कल्पित है, अब कल्पना कितनी भी हो, असली बात तो ब्रह्म है। अगर उस ब्रह्म को, अगर उस नित्य को, अगर उस विभू को, अगर उस अव्यय को, अगर उस सूक्ष्मम को किसी तरह से हम वहां तक पहुंच पाए, वहां तक पहुंच पाने का अर्थ केवल इतना ही है अंतर्मुखी होना। क्योंकि अंतम बात ये जो हम कह रहे हैं कि विभू है सूक्ष्म है, वो आपका अपना ही स्वरूप है, केवल उपाधि का निराकरण करने की बात है। ब्रह्म पर से देश काल वस्तु या ब्रह्म की अधिष्ठानता और अपनी प्रकाशकता, इन दोनों की एकता का नाम तत्व की एकता है। जो प्रकाशिक है वस्तुओं का, वस्तुतः वही अधिष्ठान भी है। अधिष्ठान का मतलब होता है जिस पर कोई चीजें टिकी हुई। आप कभी अपने आप में ये कल्पना करके देखो कि जैसे मैं हूं, ये शब्द है मैं। अच्छा, मेरा अधिष्ठान क्या, मैं किस चीज पर टिका हुआ हूं। अपने बारे में आप ये मोटे तौर पर एक बात है, मोटी मोटी सी, जैसे आप कहो अनपढ़ लोगों के सोचने का ढंग अपना लें हम, तो वो क्या चीज है जिस पर मैं टिका हुआ हूं, मेरा आधार क्या है। आधार शब्द भौतिक होता है, भौतिक का मतलब है जैसे ये मेज आधार है इस पुस्तक का, मेरी पुस्तक इस मेज पर टिकी हुई, और ये मेज का ये नीचे जो पड़ा हुआ तख्त है वो आधार है, और उस तख्त का आधार ये छत है, ये फर्श है, उस छत का आधार ये दीवारें, दीवारों का आधार पृथ्वी है, ऐसा करते चले जाओ। पृथ्वी का आधार पानी है, अब ये आधार। जहां तक भौतिक चीजें होती हैं एक दूसरे पर टिकी हुई, उनको आधार कहते हैं, कि कोई आधार चाहिए टिकने के लिए, कोई बेस चाहिए जिस पर वो हम रख सकें किसी चीज। लेकिन जहां चेतन शब्द आता है, चेतन को अधिष्ठान, उसका अधिष्ठान क्या,